ہر مرحب دوراں گزر بد حیدر کی یاد دلا دیں گے ہم گنبد بیت المقدس پر خیبر کا علم لہرا دیں گے پامان خدا پامان خدا علی مولا
مرد آباد مرد آباد جو بکنے پہ تیار ہے
ہم ملتمس ہیں خطاب کے لیے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب صابر ابو مریم سے کہ وہ شرکائے جلسہ سے خطاب فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آئی ایس او پاکستان کے جوانوں کو خراج تحسین اور آج کے اس جلسے میں شرکت کرنے والی عظیم ماؤں بہنوں اور بھائیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. ابھی بزرگوں نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کلی طور پر حکومت پاکستان کے سامنے ایک مطالبہ بھی سامنے آیا ہے. البتہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے لیے اس کا پس منظر واضح ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دو تین مہینے کے بعد پاکستان کی سرزمین پر غاصب صہیونیوں کی جعلی ریاست اسرائیل کے ساتھ کبھی تعلقات قائم کرنے کی بات کی جاتی ہے اور کبھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ ڈیلیگیشنز جس کا انیشیٹر جس کو بھیجنے والا ایک متحدہ عرب امارات نامی ملک ہے کہ جو وہاں سے اس کو انیشیٹ کرتا ہے. اور اسی طرح میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک پر منظم سازش کے تحت یہ سارا کام انجام دیا جا رہا ہے. جس طرح یہاں پر ابراہیمی معاہدے کی بات ہوئی جس طرح یہاں پر ڈیل آف سینچری کی بات ہوئی یہ سارے کے سارے ناکام ہو چکے ہیں, یہ سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قبر کی طرف گامزن ہے اپنے منصوبوں کے ساتھ جو وہ لایا تھا, اور اس کا دوسرا سکسیسر جو اس وقت امریکی صدر ہے وہ بھی اسی طرح اپنی خواہشات کو لے کر ڈوب جائے گا. لیکن ہم سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی ان کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی. پاکستان اس وقت عرب دنیا کی سازشوں کے نشانے پر ہے. امریکہ اور چند عرب ممالک نے مل کر یہ منصوبہ بنایا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرو, پاکستان کو اتنا انتشار کا شکار کر دو کہ جب یہاں پر اسرائیل کے متعلق کوئی بات ہوگی تو عوام کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ عوام امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں. اور اسی سازش کے تحت یہ سارے کے سارے مل کر امریکی چھتری کے تلے یہ عرب دنیا کے حکمران پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں. پاکستان کو گزشتہ 4 سالوں سے ایک بدترین دباؤ کا سامنا ہے. یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ کم از کم اسرائیل کے ساتھ ایک دوستی کر لو, کم از کم اسرائیل کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ جاؤ, کم از کم اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی سطح پر تعلق بنا لو. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح بابصیرت قائد نہیں تھے؟ جب پاکستان آزاد کیا گیا, جب پاکستان بنایا گیا, یہ مسئلہ فلسطین تو اس وقت بھی موجود تھا, اس وقت اس کی ابتدا ہو رہی تھی. غاصب صہیونی دنیا بھر سے لا کر فلسطین میں بسائے جا رہے تھے. اسی موقع پر ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو لا کر جو بسایا جا رہا ہے اور جو وہاں پر اسرائیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک خیانت ہے, یہ پورے عالم عرب کے ساتھ ایک خیانت ہے. بر صغیر کے مسلمان اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور یہی وہ نتیجہ نکلا کہ ہم نے دیکھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف بر صغیر کے اندر یوم فلسطین منائے بلکہ 23 مارچ 1940 کو جب ایک یادگار قرارداد کہ جسے آپ قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس قرارداد کے ساتھ قرارداد فلسطین پیش کی گئی, فلسطین فنڈ قائم کیا گیا. یہ وہ ساری باتیں ہیں जो हमें बता रही है हमारा बानी, हमारा फादर ऑफ द नेशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिना किस बसीरत के साथ इसराइल के उस खतरे को देख रहा था। सिर्फ बर्रे सगीर में नहीं बल्कि दुनिया अरब और दुनिया फारस में उठने वाली आलम इस्लाम की कयादतें के जिनमें सबसे ऊपर इस सदी के सबसे अदीम रहनुमा हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी सोच भी यही सोच थी और उनके अफकार में भी हमें मिलता है कि एक ही बात मिलती है जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की वही बात हमें आगे चलकर हजरत इमाम खुमैनी के अफकार में भी नजर आई। ये मुमासलत थी इन कायदीन के दरमियान के जिन्होंने कहा इसराइल एक गासिब और नाजायज रियासत है, इसराइल आलम मगरिब की नाजायज औलाद है, फलस्तीन फलस्तीनियों का वतन है। तो मैं ये कहता हूं कि जब बानी पाकिस्तान ने ये फॉर्मूला दे दिया है तो अब ये कौन लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, जो हमारे फॉरेन ऑफिस के अंदर बैठकर इन लोगों को इजाजत देते हैं कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाकर इसराइल का सफर करें। अभी मैं आपको इस वाक्य के ऊपर दो बातें बताकर इस बात को खत्म करूंगा। ये हमारे साफी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अभी इस कारवान के अंदर जो ये डेलीगेशन भेजा गया इसको भेजने वाला भी अरब अमारात है, अरब अमारात की एक एनजीओ है, इसके अंदर पीसीबी का साबिक चेयरमैन नसीम अशरफ, इसी तरह एक खातून सहाफी यहाँ पर बड़ी मशहूर हनीला, वो गई हैं जो पहले भी गई थी, और तीन हमारे टीवी चैनल के सहाफी, मैं उनके नाम इस वक्त इसलिए नहीं ले रहा कि उनको ये वार्निंग दे रहा हूं इस मीडिया के जरिए कि आप अपनी सफों में काली भेड़ों को साफ कर लें, वरना ये मार्च आपके दफातर तक आने में देर नहीं लगनी। क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? हम यहां से ये पैगाम दे रहे हैं कि आपका नाम नहीं ले रहा, ये इखलाकियात का तकाजा है, लेकिन ये मत समझो कि ये सब्र ज्यादा देर तक रहेगा, ये सब्र का पैमाना टूटेगा और इससे ज्यादा आवाम प्रेस क्लब की बजाय तुम्हारे दफ्तरों तक आएंगी और तुम्हारे दफ्तर हमारी दस्तरस से दूर नहीं है। लिहाजा फिर गुजारिश करता हूं आपसे कि अपनी सफों में बैठी काली भेड़ों को चुन लो और उनको साफ करो, वरना अवामी इंतकाम से नहीं बचोगे। हमें ये कहते हैं कि हम अमरीकी पासपोर्ट पर गए हैं। मैं मीडिया के भाइयों आपको बता रहा हूं, मेरे गयूर मीडिया के भाइयों जो इस मुजाहरे की कवरेज करने आए हो, एक सहाफी पाकिस्तान का एक टीवी चैनल का ऐसा भी गया है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गया है, इसका सबूत है, इसके शवाहिद हैं और अनकरीब हम इस शवाहिद को रिवील करेंगे, हम इस सीक्रेट को जाहिर कर देंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि ये कौन सा सहाफी था, कौन सा टीवी चैनल था कि जिसका ये सहाफी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल पहुंच गया। और हुकूमत वक्त, हुकूमत पाकिस्तान, मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम साहेब, आपको भी मुतनब्बे करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। एक तो हुकूमत आपसे नहीं चल रही, दूसरी तरफ ये आपका फॉरेन ऑफिस ये किस तरह की नाअहलियां कर रहा है। यहाँ से डेलीगेशन को इसराइल भेज देते हो वजीर आजम साहब, चंद दिनों पहले आप पर ये इल्जाम आयद किया गया है कि कतर में जब आप दौरे पर थे मुसाद का एक स्पेशल जेट वहां पर आपके तैयारे के साथ खड़ा रहा जिसमें मुसाद के लोग थे, इसराइली खुफिया एजेंसी के लोग थे और आप भी सेम टाइमिंग पर उसी जहाज के साथ आपका जहाज खड़ा रहा। आपने उस बात की तर्दीद नहीं की। हमारे दिलों में बहुत सवाल हैं, हमारे जहनों में बहुत से सवाल आते हैं, अवाम का सब्र ना टूटे। मैं आपको भी कहता हूं फौरी तौर पर इसराइल जाने वाले इन पाकिस्तानी शहरियों की, पाकिस्तान की शहरियत मुअत्तल करो, इनकी शहरियत को खत्म करो, इनको इसराइल जाना है, इनको जहन्नुम में जाना है, इनको भेज दो, लेकिन ये पाकिस्तान में रहने के हकदार नहीं है। लिहाजा ये हमारा मुतालबा है वजीर आजम से, पाकिस्तान के सिपा सालार आर्मी चीफ से, जनरल कमर जावेद बाजवा से, इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप मुल्क को कौम की सलामती के पास जा रहे हैं, आपने कौन सी मुल्क की सलामती का पास रखा है? चीफ जस्टिस साहब आपको तो अब तक सो मोटो नोटिस ले लेना चाहिए था और आपने अभी तक खामोशी इख्तियार कर रखी है। हम यहाँ से ये मुतालबा करते हैं, अगर आपका ये मुतालबा है तो हाथों को बुलंद करके इसका इजहार करो कि क्या आपका यह मुतालबा है कि इनकी शहरियत को कैंसिल किया जाए, इनकी शहरियत को, पाकिस्तान की शहरियत को कैंसिल किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाया जाए जो कानून पाकिस्तान में सहूनी लॉबी करने वाले इन दहशतगर्दों, इन मुल्क दुश्मन और इन खयानतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। आज का यही मुतालबा है। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस डेलीगेशन में जो पाकिस्तान से सहाफी भेजे गए हैं, ये सिर्फ ये एक साजिश है ताकि सहाफियों को और आवाम को बाहम दस्तो गिरेबां किया जाए। ये हमारे सहाफी बिरादरी है। जब फलस्तीन में हमारी सहाफी बहन शहीद हुई तो सबसे पहले पाकिस्तान में यही हमारे सहाफी भाई सड़कों पर निकले, यही हमारे कैमरामैन, यही हमारे फोटोग्राफर भाई सड़कों पर निकल कर आए और फलस्तीनी खातून सहाफी के लिए सड़कों पर खड़े हुए। आखिर ये काली भेड़े क्यों वहां जाकर इस पूरी सहाफी बिरादरी पर धब्बे का निशान बन रही है। मैं आखिर में इस सहाफी बिरादरी से ये अपील करूंगा कि आप इस वाक्य का नोटिस लीजिए, अपनी सफों में मौजूद इन काली भेड़ों को निकालिए। ये ना सिर्फ आपके लिए बदनामी का बाइस है बल्कि पूरे पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे और जो भी इकदाम जिस तरफ से होगा, जिस तंजीम, जिस इदारे, जिस अवाम, जिस अकवाम की तरफ से होगा, हम उसमें खड़े रहेंगे और इस जुर्म का, इस खयानत का इंतकाम लिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।